of masks, which have been advised against for the general population by the World Health Organization. Hand sanitizer and toilet paper, for some reason.
I just want one pack!
When a vaccine is developed in the film, incorrectly just 133 days after Patient Zero, Jude Law's character threatens to continue misinforming his followers about the potential side effects of the vaccine, including autism.
The lawyers indemnified the drug companies. Maybe it causes autism or narcolepsy or cancer 10 years from now. Who knows?
Just the other day, two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.
The film also taunts at misinformed government officials.
Well, Homeland Security wants to know if we could put a vaccination in the water supply, like fluoride, cure everyone all at once.
Which is just icing on the cake after seeing this go down in a real-world White House.
Well, you take a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact or much of an impact on corona?
No. Probably not.
Probably not.
As for what comes next, the film predicts a suspension in basic services, food shortages, and mass graves. Let's hope that we don't get to see any of that. Using this opportunity to remind everybody that washing your hands with soap is the best route. Soap is the best agent to break down the protein and lipid walls of the virus. Panic doesn't help anybody, but sadly, it seems they also got this right.
कंटीजन फिल्म का ये कंपैरिजन आपने देखा और 2020 जनवरी में जाहिर है ये शुरू होता है और उसके बाद आउट नहीं होता, मार्च में ये मुकम्मल तौर पे आउट होता है. उसके बाद कितनी दुनिया में हलाकतें हुई आप लोगों के नोटिस में है, मगर ये 2020 में जब होता है तो इसका मतलब है इससे एग्जैक्ट 9 साल पहले ये फिल्म तैयार की गई थी. एग्जैक्टली वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ इस फिल्म में वो तमाम चीज़ें और अगेन वही पेंगुइन्स एंड बैट्स और सुअर की वजह से ये बीमारियाँ. आजकल जब आबादी बहुत ज़्यादा तो बीमारी के फैलने के और ख़ास तौर पर अगर वायरस की डिजीज़ है तो उसका फैलना, मगर स्टे सेफ, स्टे एट होम. बार बार गवर्नमेंट ऑफ ओंटेरियो की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की जानिब से एक ही पैगाम आता है कि द ओनली इसकी रेमेडी ये है कि बाहर निकलिए, वापस आइए. ओनली जो साबुन है इज द बेस्ट एजेंट कि अगर इस हाथों को धोते हैं तो इसकी जो प्रोटीन्स हैं उसको क्रैक कर देता है. जब प्रोटीन्स क्रैक करती है तो आरएनए जब बाहर आ जाता है तो वो यूजफुल नहीं होता. बाय द वे, जब मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ, हम टॉप ऑफ द आवर की तरफ जाना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, बाज़ औक़ात हम अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते. इट्स वेरी लकी अभी तक वैक्सीन की बात होती है और 3 वैक्सीन का जिक्र आप और मैं बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बट मुख्तलिफ और कंट्री, जो रशिया की वैक्सीन भी बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, चाइना की वैक्सीन आप देखिएगा उन्होंने तमाम का तमाम कंट्रोल किया, मगर इस पोलिटिकल वॉर भी इस वक्त चल रही है क्योंकि चाइना की वैक्सीन को अंडरमाइन किया जा रहा है इंडिया की वैक्सीन के जरिए. और आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल थे और अमेरिका ने अंदिया दिया था कि वो इंडिया को और सपोर्ट करेगा ताकि वो मैक्सिमम वैक्सीन तैयार करें और कुछ लोगों को मुफ्त दी जाए, कहीं जगह पे बेची जाए, जस्ट टू अंडरमाइन. और चाइना क्योंकि जब कर रहा है तो वो ये समझ लेते हैं कि चाइना अपने नंबर बना रहा है, उसको दबाने के लिए ये किया. इस वक्त दुनिया की जितनी चेंजेस, ये पाकिस्तान पे भी जो प्रेशर है, द बेसिक थिंग इज नॉट ओनली अफगानिस्तान, द बेसिक प्रॉब्लम इज चाइना, क्योंकि दे जस्ट वॉन्ट टू ब्लॉक चाइना, मगर दे विल नेवर बी एबल टू ब्लॉक चाइना. मगर जब मैं ये तमाम की तमाम बातें कर रही हूं तो वैक्सीन ऑफ कोर्स 3 हफ्ते का शुरू में कहा गया था, 3 हफ्ते के बाद वैक्सीन की सेकेंड डोज दे सकते हैं, मगर क्योंकि फर्स्ट राउंड ही पूरा नहीं हुआ तो अब वो फिर टाइम बढ़ाने के बाद 3 महीने का दरमियान का सेकेंड डोज के लिए वक्फा दिया गया. मगर साहब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, इसके फौरन बाद मैं टॉप ऑफ द आवर की तरफ लेके चलूंगी. कहते हैं कि मुल्क भर में पाकिस्तान में 40 लाख अफराद को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS ने नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड 19 की वैक्सीन के जो ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल का काम भी शुरू कर दिया है। यकीनन इसका जिक्र करूंगी, यानी वो दवाई नाक के जरिए दी जाएगी और वही कोविड 19 के अगेंस्ट ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी। मगर पहले हमारे टॉप ऑफ द आवर्स।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
कोविड 19 से हमने ये सीखा है कि एक छोटी सी चीज कितनी तेजी से फैल सकती है एक उठती लहर की तरह। अगर हम में से ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लें तो हम एक बड़ी लहर शुरू कर सकते हैं, कनाडा के लोगों की लहर, जो हमें अपने प्यारी जगहों और अपने प्यारों के पास लौटने में मदद करेगी। हम सब वैक्सीन लगवा कर मदद कर सकते हैं। canada.ca/covid-vaccine पर मजीद जानें। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
J&J Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&J Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obhay at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
आसान नहीं होता अपनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर छोड़ देना, लेकिन आपने किया, इसीलिए जब आप घर के बारे में सोचते हैं तो सांबा बैंक आपके बारे में, जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, स्टॉक एक्सचेंज या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और हाँ, पैसे रखने या ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। घर वालों के लिए गाड़ी लेनी हो या पैसे भिजवाने हो, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हर ट्रांजैक्शन मिनटों में। तो अपना सांबा बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए अभी www.samba.com.pk पर विजिट करें और सिर्फ 10 मिनट में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। सांबा बैंक पाकिस्तान, व्हेन यू थिंक ऑफ होम वी थिंक ऑफ यू। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
ओंटारियो का कोविड 19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहने, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आपकी बारी जल्द आने वाली है। ontario.ca/covid-vaccine-plan पर मजीद जानें या 300 जबानों में मालूमात के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। अदायगी शुदा मनजानिब हुकूमत ओंटारियो।
सोडी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दी मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी लई सोडी फर्नीचर ने कर्ब साइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दी है। तुसी इना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर इना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोडी फर्नीचर दी सेल्स टीम वर्चुअल टूर्स अते बेस्ट डील्स लई तुहानू आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस से मिलेगा सोडी फर्नीचर तो।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
बैंक अलबला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहें पैसे डालें और जब चाहें पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अलफला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
आप वहाँ नहीं, लेकिन जब आप रेमिटली के जरिए पैसे घर भेजते हैं तो आप अपनों के पास महसूस करते हैं, बेटी की सालगिरह के लिए या किसी भी मौका पर। रेमिटली आपको देता है तेज और महफूज ट्रांसफर की सहूलत और फौरी अपडेट से आप और आपके अपनों को ज़हनी सुकून। रेमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले ट्रांसफर पर खुसूसी ऑफर से फायदा उठाएं। रेमिटली
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसुकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसुकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसुकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
जी साहब नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड साहब आपकी अब मुलाकात की तरफ ले चलूं मैं आपको, और मुलाकात करानी है हमने आपकी जानी पहचानी शख्सियत शिराज शफीक अफकाल मॉर्गेजेस मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। 416-502-8000 इनका फोन नंबर है, 416-502-8000। एंड शिराज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुना भैया ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज पहले कुछ अपने मुतालिक है अकाल मॉर्गेज मुतालिक बता दीजिए।
जी माजिद भाई, माजिद भाई अकाल मॉर्गेज जिस तरह से सभी जानते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20-22 साल से सॉल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज जो है वो अपने नाम और फर्म दोनों की वजह से वो जानी जाती है। आपको किसी भी किस्म की मॉर्गेज चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल मॉर्गेज है या आपकी कोई कमर्शियल मॉर्गेज है, किसी भी तरह की फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड प्राइवेट मॉर्गेज, या आपको कोई डेट कंसोलिडेशन करवानी है, या आपको कोई किसी किस्म की भी कोई लोन के मुतालिक या लाइन ऑफ क्रेडिट के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जी मेरा नंबर नोट कर लें, 416-502-8000।
शिराज हम एक किसी की पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं, आज का आपका क्या टॉपिक है?
माजिद भाई आज मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ प्राइवेट सेकंड मॉर्गेज के ऊपर। बहुत सारे जो हमारे बहन भाई हैं जो कि ये समझते हैं जी कि प्राइवेट जो मॉर्गेज है वो काफी महंगी है, उसकी रीजन ये है कि जी उसके अंदर कोई फीस वगैरह शामिल होती है और वो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो एज कम्पेयर टू हमारे ए लेंडर की मॉर्गेज से या बीस की मॉर्गेज से ज्यादा होता है। देखिए मजीद भाई, जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, मैं ये बता दूं कि हमारे पास हमेशा ऐसे लेंडर हमारे साथ काम करते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट और फीस काफी कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास घर मौजूद है और उस घर के अंदर इक्विटी पड़ी हुई है, ठीक है, आप अपने घर की इक्विटी के अगेंस्ट अगर आप बोरो करते हो तो आपकी $40,000 अगर बोरो करते हो लेट्स सपोज, तो आपकी मंथली किस्त बनती है $333, ठीक है। अब अगर यही $40,000 आप अपने क्रेडिट कार्डों से बोरो करते हो क्योंकि आप अपनी फर्स्ट मॉर्गेज ब्रेक नहीं करना चाह रहे किसी भी रीजन से, उसके ऊपर प्लेंटी पड़ सकती है या अभी आपने ली है आप उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे, प्लेंटी ज्यादा है, या आपके क्रेडिट कार्ड भरे हुए हैं या आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है और आप अगर ब्रेक करोगे या उसको रिफाइनेंस करवाओगे दोबारा क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो उस सबसे बेहतर आपके लिए सलूशन ये है कि आप अपनी जो है सेकंड मॉर्गेज उठाओ। जब आप सेकंड मॉर्गेज उठाते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड बहुत कम है। क्रेडिट कार्ड पे आप इंटरेस्ट रेट हाई पे करते हो एज कम्पेयर टू सेकंड मॉर्गेज, ठीक है। अगर आप सेकंड मॉर्गेज लेते हो तो आपकी $40,000 के ऊपर किस्त बनती है $333। यही अगर आप पैसे बोरो करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपकी वहां पे मंथली किस्त बनती है $1,200। अब माजिद भाई देखेंगे कहां पे वो $1,200 और कहां पे ये $333। आप ये जो पैसे हैं किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप इन पैसों से अपनी बेसमेंट फिनिश कर सकते हो। आजकल जिस तरह से आप सबको पता है जी कि जो वन बेडरूम की बेसमेंट है अगर उसका रेंट भी $1,300-1,400 चल रहा है,
सही,
ठीक है। अगर आपने ये पैसे बोरो किए हैं क्रेडिट कार्ड से तो जो भी आपकी जो रेंट आ रहा है आपका वो जस्ट आपका इंटरेस्ट में जा रहा है,
सही,
ठीक है। आप वहां पे जस्ट अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अगर आपने यही अपनी इक्विटी से निकाले हुए पैसे, ठीक है, तो आप वहां पे $333 सारा पे कर रहे हो। अब आप खुद देखें कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरी देखिए आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप एक मरतबा अपनी ऑप्शन हमारे साथ डिस्कस जरूर करो, हमारे साथ मशवरा करो, ताकि आपको अपनी ऑप्शंस का पता चल सके। आप अपने जो ऑप्शंस है जब आप उनको देखते हो, उनको सामने रखते हो, तो आपको पता चलता है कि हमें भाई नुकसान कहाँ पे है और फायदा कहाँ पे है।
सही,
ठीक है ना। हम लोग अगर आप अपने हमारे साथ डिस्कस करते हो तो हम उसके कोई डिस्कस करने के या कोई आपको एडवाइस करने के कोई चार्जेस नहीं लेते आपसे। वो फ्री कॉस्ट आपको हम लोग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि यार आपको आपकी ये सिचुएशन है, आपके पास ये सॉल्यूशंस हैं, आप ये लोगे तो ये इस तरह से होगा। बेस्ट जो लेंडर्स हैं हम लोग वो आपके लिए यूज करते हैं, आपकी मॉर्गेज करवा के उनसे देते हैं। कंप्लीटली आपको प्रोफेशनली गाइड किया जाता है, जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन हो हम आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो जी शहराज शफीक अकाल मॉर्गेज, मेरा नंबर नोट कर लें 416-502-8000
416-502-8000। ये बता चलूं कि सिर्फ प्राइवेट मॉर्गेजेज या सेकंड मॉर्गेजेज या इन चीजों के लिए नहीं, बल्कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मॉर्गेजेस, चाहे आपका नया मॉर्गेज हो, रिन्यूअल हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एक दफा आप साहब शराज शफीक को कॉल जरूर करें एंड आई कैन गारंटी यू के ही इज गोइंग टू डायरेक्ट यू इन अ वेरी ऑनरेबल मैनर। 416-502-8000 इनका फोन नंबर है, 416-502-8000 शराज शफीक अकाल मॉर्गेजेस का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। शराज शफीक से हमने आपकी बातचीत करवा दी। साहब 4:15:37 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जनाब मुस्तफा अली खान साहब हमारे साथ होंगे। सब गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, एंड इफ यू कीप इट अप समर हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा। एंड सबसे ज्यादा चीजें जो हम मिस करते हैं ना, वो ये मिस करते हैं कि अपने यार दोस्तों को जपियां पाना जी, गले लगाना। जब मिलते हैं हम तो एक दूसरे से, तो अपने बहन भाइयों से, बहन भाइयों के बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को जब हम मिलते हैं उनसे, तो हम गले लगा के मिलते हैं। ये हमेशा से हमारा दस्तूर रहा है कि हम गले मिला के मिलते हैं, और इससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है। मगर ये कोविड 19 ने साहब 19 ही कर दिया हमको, और हम एक दूसरे से दूर हो गए। अब देखें, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स बहुत नीचे आ रहे हैं। अगर लास्ट 24 आवर्स का देखूं तो 1039। अगेन मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि ये नंबर्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो यू नो इसमें वो नहीं है। मगर अगर ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही रहा, तो समर जो है हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा। 1039 लास्ट 24 आवर्स में। संडे को जो था, संडे का काउंट था 1446। लास्ट 24 आवर्स में डेथ्स बढ़ गई है, 33 डेथ्स हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टेस्ट भी कम है। टेस्ट भी क्यों कम है? इसलिए कि भाई ज्यादातर लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। 16,857 टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है 6.4% है। एंड 7-डे रोलिंग एवरेज को अगर देख लें तो उससे अंदाजा होता है कि यस, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, विच इज 1692 7-डे रोलिंग एवरेज है। एंड अगर पिछले हफ्ते इस वक्त मैंने आपको बताया था कि 2287 था। मोर देन 65% ऑफ ट्रांटोनियंस, जो एडल्ट ट्रांटोनियंस हैं, उनको जो है एटलीस्ट एक डोज लग चुकी है, विच इज अबाउट 1,986,966 लोगों को एक डोज लग चुकी। दिस इज ओनली इन टोरंटो। एंड आज हम एक और माइलस्टोन करेंगे, विच इज 2 मिलियन को हम आज पास कर देंगे। तो वे टू गो जॉन थोरी and all the people who are working very hard to put.
Is there any ifs and buts?
There is no ifs and buts.
Are you sure?
100% there is no ifs and buts. People have done a tremendous job.
Mustafa Khan sahab hamare saath hain. माजी जमाल ने भी सारा का सारा टाइम गुजार दिया। आखिर हर सेगमेंट को कवर करने के लिए स्पॉन्सर्स की तो जरूरत होती है। मैं क्विकली दो एक शेयर कर दूं साहब। कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेज ने हमें ताबुन दिया। अगर आप फर्नीचर एंड अप्लायंसेज लेना चाहते हैं
cannot visit in the store. Magar agar aap online koi appliances pasand kare, rate bhi beat karenge, aap Madiha ji se baat kar lijiyega. Complete Home Furniture, very conveniently located in Brampton, Steeles and Rutherford, between Rutherford and Kennedy, Home Depot wala plaza mein. Complete Home Furniture and Appliances, 9052444663. Madiha ji se baat kijiyega. कॉकअप जावेद ने हमें तावन दिया. अगर आप मॉर्गेज चाहते हैं तो कॉकअप जावेद पहले टीडी बैंक के साथ हुआ करते होते थे, बट नाउ ही इज दिलों के बादशाह, डील्स विद ऑल द बैंक्स, एंड इवन अगर आपने कोई कमर्शियल लैंड भी लेनी है तब भी आप ले सकते हैं. कॉकअप जावेद का नंबर, ही विल गेट यू मॉर्गेज, और उनका नंबर 4164546065. कल रात को मुझे ग्रिलना चिक के ऊपर, क्या नाम है उसका,
ग्रिलना चिक
पे जाने. भाई माजिद भाई, खुदा की कसम, इट इज, आपने अभी तक खाया नहीं? वो
नहीं खाया मैंने, कमाल है एक बात है.
कब खाया आपने?
मैंने जब भी उनका नया खुला था, मैं और आप ही गए थे साथ, मैं और आप ही साथ गए थे. देख लीजिए आप, याद आ गया.
मैंने बिल्कुल खाए थे, काशिफ भाई भी वहां पे थे, मगर नो, आपने ये चीज नहीं खाई जो मैं आपको कह रही हूँ.
अब ये क्या,
अब यकीन कीजिएगा मैं बात कर रही हूँ ना, मुंह में पानी आ रहा है. चिकन ब्रेस्ट, आई प्रिफर टू,
मैं आपको बताऊँ, आप ये बात कर रही है ना, तो इससे मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा, मुस्तफा खान साहब के मुंह में पानी आ रहा है.
ये देखिए कितना मजे का चिकन है, मैं फोन पे ही दिखा रही हूँ. वाओ, चिकन ब्रेस्ट, इट वाज सो डिलीशियस.
मुझे उनका वो सैंडविच पसंद है.
नो, ये चिकन ब्रेस्ट आपने खाई नहीं? बहुत मजे की है, एंड बहुत कम सॉल्ट, वेरी डिलीशियस, जूसी, डीप डाउन. मजीद भाई इज ऑलवेज मिसलीडिंग, आई नो, आई लव यू 6712, यू, तुम, आपने मेरा दिल पढ़ लिया. मजीद भाई मिसलीड करते हैं, मगर आप मेरे कहे के ऊपर ना मंडे को जाइएगा, वैसे एवरी डे, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ $2 का डिफरेंस है, 725 का होता है. मगर आई एम वेरी मीन, आई ट्राई टू टेक एडवांटेज. मैं मंडे को जाया करती होती हूँ, मैं और मेरा बेटा, हम वहीं बैठ के लेते हैं, फिर हम गाड़ी को ऑन रखते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं. बोथ ऑफ अस एंजॉय अ लॉट. ये मंडे स्पेशल चिकन फिले सैंडविच बहुत मजे का. मैं ये वाली चिकन ब्रेस्ट, देखे मैं आपके लिए फोटो भी लेके आई थी. अमीर एक दिन तुम इसका क्लोजअप दिखा रहे थे, आज तुम नहीं क्लोजअप दिखा रहे, पता नहीं आपने क्या किया था.
आप करीब जाए,
देखिए कितनी डिलीशियस है.
अच्छा, नहीं आप इनका चिकन फिले सैंडविच जो है ना, वो
मुजफ्फर अली कह रहे थे
दिमाग, मैं बीमार हूँ. जब मैं
बहुत दिमाग पे जोर दिया करती थी तो मुजफ्फर अली कहा करते होते थे, अल्लाह उनको करोड़ जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे ज्यादा जोर ना डाल दिमाग के ऊपर, पुरानी मशीन है वैसे ही फट जानी है, वैसे ही बैठ जानी
है. अरफा जी एक मिनट, यहाँ पर आप खांस रही हैं, वहां मेरे कान में मुस्तफा खान साहब खांस रहे हैं, तो मैं ये कहाँ फंस गया हूँ यार.
मुस्तफा खान साहब, आपको पाकिस्तान लेके चलती हूँ. मुस्तफा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे पाकिस्तान जिंदाबाद. आई तो हरी टी शर्ट
पहने पीने की, आप खाने पीने की जो बातें कर रही थी तो मुझे बंसरोड़ याद आ रहा था, जहाँ एक बड़ी सी देग में जो है दही वड़े मिलते हैं, और सीख कबाब जो है वो फुटपाथ पे एक अच्छू मियाँ है वो तलते हैं, और इसके अलावा मगज निहारी की 2-3 दुकानें हैं.
आप तो खाते ही नहीं होंगे, आप तो मुझे लगता है बड़े केयरफुल से हैं, आप नहीं ऐसी चीजें खाते होंगे. मैं वैसे ऐसी हर चीज खाती हूँ.
मैं जनाब जिराड स्ट्रीट पे जहाँ रक्षा खड़ा हुआ है ना बाहर, उस रेस्टोरेंट में भी खा
सर जी. वो तो अच्छा वाला रेस्टोरेंट है वो तो, हम तो सड़क छाप रेस्टोरेंट में खाने का तो मजा ही और है.
तो यहाँ आप तशरीफ लाइएगा और मुझे लिख के दे दीजिएगा कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा, मैं आपको एक से एक सड़क छाप
आप यकीन कीजिएगा.
मुस्तफा खान साहब इनको 3 हट्टी के पुल के नीचे ले जाइएगा.
नो, मैं अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं गोलगप्पे,
पुरानी बात हो गई है.
अच्छा. आज मुस्तफा खान साहब, वैसे पाकिस्तान की एक चीज जो खौफनाक मुझे नजर आई यार, ये मुर्गी का क्या कर दिया, यानी मरी हुई मुर्गियां बेचने लगे हैं, वायरस आ गया मुर्गी पे.
मुर्गियां कौन सी, वो उसके बारे में वो है, رانی کھیت ایک بہت ہی قدیم بیماری ہے, میرے بچپن سے چلی آ رہی ہے, اس کے بارے میں خبر ہے کہ کسی جگہ پہ ہے اور اس کو کووڈ سے بعض لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.
لوگ تو مبالغے میں ماہر ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. ایک گڈ نیوز ضرور ہے, میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ہی شیئر کریں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اساسوں کو منجمد کیا گیا تھا, جس میں جو روز بیلٹ ہوٹل ہے ہمارا نیو یارک میں, اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ شاید زلفی بخاری صاحب نے اس کے بارے میں سودا کر لیا یا جو بھی. دنیا تو افواہیں پھیلانے میں بڑی ماہر ہے, مگر الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ ریکوڈک کا کیس پاکستان کے حق میں آ گیا. از دیٹ رائٹ؟
مجھے اس کے بارے میں فوری طور پہ کوئی اطلاع نہیں ہے
سر. یہ تو بمباسٹک خبر
نہیں, اگر ایسی ہوتی تو یہاں جو ہے جو ویب سائٹس ہیں جو میں نے اب تک دیکھی ہیں ان پہ تو ابھی تک نہیں چڑھی ہے
سر. بی بی سی آپ کا کور کر رہا ہے
صبح تک یہ نہیں. بی بی سی پہ کب آئی ہے؟ اس لیے کہ میں نے جو آخری دفعہ بی بی سی چیک کیا ہے وہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے پہلے کیا تھا.
صحیح.
تو آئی ڈونٹ نو کہ کب آئی ہوگی.
بہرحال صاحب, ریکوڈک کے حوالے سے بی بی سی کی نیوز ہے, بی بی سی کی ہے اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کی ہے کہ پی آئی اے کے اساسے جو منجمد کرنے کے لیے دیے گئے تھے اس کے احکامات کو منسوخ کر دیا گیا ہے, اور تمام تر احکامات منسوخ کیے جو کہ پی آئی اے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. چلیے یہ بھی معاملہ, حالانکہ یہ بہت بڑی نیوز ہے اس وقت کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جس میں نیو یارک کے روز بیلٹ ہوٹل پیرس کے اسکرائب ہوٹل بھی شامل ہے, ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا. اور یہ ریکوڈک کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, تھوڑا سا اس کو کور کر لیں کہ پاکستان کے اوپر کیس تھا کہ اس کو کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا گیا تھا, تھوڑا سا وہ شیئر کر لیجیے.
جی, یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں سپریم کورٹ بھی شریک تھی, افتخار چودھری صاحب جو ہیں, اور انہوں نے اچانک سے 2011 میں ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی اس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں انہیں کینسل کر دیا جائے. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے لائن آف آرگومنٹ کے تحت یہ کر دیا تھا, جو کہ سرکار چیف جسٹس تھے, تو سر چیف جسٹس تو مائی باپ ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو جو تقریباً 6 بلین ڈالر کا ٹیکہ لگنے والا ہے, اس لیے کہ میں نے ابھی تک یہ خبر نہیں پڑھی ہے, اگر اٹیچمنٹ جو ہوٹلس کی ہے وہ ہٹا لی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے کہ ریکوڈک کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو گیا ہے. ابھی ایک پارٹ جو ہے آپ سنا رہی ہیں کہ جی ہوٹل کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن شاید فیصلہ, اگر اس کو ہم فیصلہ سمجھ لیں تو شاید قبل از وقت ہوگا. فی الحال یہ اوور آل کیا سیٹلمنٹ ہوتا ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے, اور اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن یہ ایک انڈیکیشن ضرور دیتا ہے ہوٹلوں کا چھوٹنا کہ شاید معاملات رائٹ ڈائریکشن میں اور پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں.
انشاءاللہ صاحب, یہ آپ کا بی بی سی بھی اس کو کور کر رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی عدالت میں ریکوڈک مقدمہ ہارنے کے بعد پاکستان کو 6 بلین ڈالر کے جرمانے کا سامنا. پی آئی اے کے اساسے اسی سلسلے میں منجمد کیے گئے, جس میں دو ہوٹلز کا ہم نے ذکر کیا تھا. 7 جنوری کو جب پی آئی اے کے بیرون ملک اساسے منجمد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تھا, اس وقت پاکستان اور پی آئی اے کی نمائندگی کرنے کے لیے بی وی آئی کی عدالت میں کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا. بہرحال اب انہوں نے, یہ آج کی نیوز ہے, اٹس اے ویری ہاٹ نیوز, اور تمام سائٹس کے اوپر یہ خبر ملے گی. ایک اور خبر ہے اگر آپ کی نوٹس میں, وہ گزری ہے.
اس کو میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس کو اتنے جوش نہ دکھائیں نیوز آؤٹ لیٹس کے یہ تاثر ابھرے کہ گویا پاکستان ریکوڈک کیس جیت گیا ہے اور دوسری پارٹی ہار گئی ہے. میں پھر یہ زور دے رہا ہوں کہ یہ صرف جو ایک پارٹ تھا اٹیچمنٹ کا, وہ اٹیچمنٹ ڈیٹیچ ہوا ہے, اس سے زیادہ ابھی ریڈ نہ کیا جائے.
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. مگر وہ خبر تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ پاکستان کی گورنمنٹ, اور ہمارے مختلف جنرل سے انٹرویوز بھی ہوئے, جنرل عبد القیوم صاحب سے ہمارا فرائیڈے کو بھی اسی سلسلے میں ایک ملاقات ہے, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस भी सोए हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी भी इस तरह से सोई हुई है कि हम ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसके लिए वी आर नॉट एक्टिव, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो अपोतापी पड़ी हुई है। मगर आज कहते हैं गुमराह कुन मालूमात पर ट्विटर और मोदी हुकूमत के दरमियान एक तनाजा खड़ा हो गया, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट?
जी हाँ, उन्होंने छापा मारा था ट्विटर के दफ्तर पे, ट्विटर इंडिया के दफ्तर पे, लेकिन वो शायद अपडेट नहीं थे। और इस सिलसिले में जाहिर है कि उसकी एक वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ जो भी एक आध लोग थे उन्होंने यही कहा कि भाई साहब आप किसकी तलाश में आए हैं, इसलिए कि कोविड की वजह से ये दफ्तर बंद है और वर्क एट होम फ्रॉम होम हो रहा है, तो ये उन्होंने किया है। और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जो पिछले दो महीने से चल रहा है कि कोविड मैनेज करने की बजाय कोविड से मुतालिक जो नेगेटिव तासुर है उसको मैनेज करने पे पूरी तवज्जो दी जाए। तो इस सिलसिले में ये एक कदम है। उससे पहले इन्होंने जो हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या यूट्यूब है, 100-100 नामों की लिस्टें देते रहे हैं कि जी ये कोविड से मुतालिक बकवास कर रहे हैं, इनको रिमूव किया जाए, ये सिलसिला चल रहा है। और इवन ये भी हो रहा है कि एक साहब जो हैं वो कानपुर का वाकया है कि हॉस्पिटल के बाहर लोगों को ऑक्सीजन लगा रहे थे, तो अस्पताल की इंतजामिया ने पुलिस बुला ली कि ये कार सरकार में मुदाखलत कर रहा है। तो उसने पूछा मैं कैसे मुदाखलत कर रहा हूँ, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं कहीं से एक दो सिलेंडर ले आया हूँ, मैं पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ, और कैसे है कार सरकार में मुदाखलत? तो उन्होंने कहा कि जी ये असल में आप हॉस्पिटल के सामने ये सारी हरकतें करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें से लेके और जो ट्विटर के दफ्तर पे छापे तक बड़ी बड़ी वारदात जो है मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया आपको पता है सदा का बदतमीज़ है, तो वो काबू में नहीं आ रहा और वो उल्टी सारी हरकतें जो हैं वो गले पड़ रही हैं।
बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपने कवर कर लिया। एक और मैं अफवाहों पे, यानी पाकिस्तान में वही जैसे भी ट्विटर की आपने बात की है, इंडिया इज़ वेरी एक्टिव इन दैट रिस्पेक्ट, उनके एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी शायद यकीनन हायर्ड सर्विसेज ही देते होंगे, और पाकिस्तानियों का दिमाग तो फौरन ही अफवाह की तरफ लग जाता है, जिसमें मैं भी साथ शामिल हूँ। मगर एक और र्यूमर जो दिमाग में है इस वक्त नज़र से गुजर रही है, कहते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनका डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में गया था, और आपको याद होगा कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज़ाती तौर पर सालसी बनने का भी अंदिया दिया था, हमारे बहुत अच्छे भाई जो अजीम मियां साहब हैं उन्होंने ही ये क्वेश्चन रेज किया था अबाउट दी कश्मीर। मगर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो कश्मीर में दफा 370 का भी नफाज हो जाता है।
ये कर दें कि वो आपने जो प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया वो गलत ले लिया है।
क्या कहा मैंने?
आपने शरीफ साहब का
नाम
मेरे दिमाग पे हावी है। मतलब हमारे इमरान खान साहब गए थे, माजरत की ख्वास्त करूं, इमरान खान साहब गए थे। मगर जो ही जब ये सारा डेलीगेशन वापस आता है तो 370 का भी इत्तलाक होता है, सिटीजनशिप का भी एक वहां पे नया बिल आ जाता है। अब जब आपके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो गए थे जनाब जंग बंद करवाने के लिए, मगर अमेरिका से बार बार एक ही बात की जा रही है, वो बिल्कुल फिलिस्तीन और इसराइल की बात तो कर ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान जमीनी और फिजाई सरहदों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे। कहा जाता है कि ये भी फैसला कर हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? वो हमारी जो शमसी एयरबेस अच्छा है वो भी मांग रहे हैं।
ओके, अगेन इसमें थोड़ा सा सोच समझ के और कॉन्शियस होके एनालिसिस करने की जरूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कभी भी वाहिद जो तहरीरी मायदा हुआ था अड्डे देने का वो 1959 में हुआ था अयूब खान के दौर में। बकायदा वो डॉक्यूमेंट है कि बडवेर का जो अड्डा है उस माहदे के तहत अमेरिका के हवाले किया गया था, जहां से सोवियत यूनियन जो उस जमाने में था तो उसके जासूसी के लिए तैयार है, उड़ा करते थे।
ये फर्स्ट एंड ओनली तहरीरी मुहैदा था।
मैं अर्ज करता हूं, मेरी सुन लीजिए जरा दो मिनट। ये वाहिद माहिदा है पाकिस्तान यूएस की हिस्ट्री में जो तहरीरी शक्ल में है, अड्डे देने से मुताल्लिक, सिक्योरिटी से मुताल्लिक। ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं कि अब जो है अड्डे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बेसिकली 9/11 के बाद जब पाकिस्तान को ये कहा गया कि या तो ये 10 शरायत मानो वरना हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तो ये जो 10 शरायत थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने मानी, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये जबानी माहिदा है, इसका कोई कागजी सबूत नहीं है। उसके बावजूद हमने उस जमाने में, जाहिर है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तालिबान की पॉलिसी को यू टर्न किया, फिर हमने ड्रोन्स के लिए जगह फराहम की, फिर हमने जैकबाबाद एयरबेस को फैसिलिटेट किया, फिर हमने राहदारियां दी, फिर जो नाटो को राहदारी दी जाती है वो देते रहे, जबानी होता रहा सिलसिला। अच्छा, और उसके बदले में हमें कोएलेशन सपोर्ट फंड से अमरीका करोड़ों डॉलर भी देता रहा। अब अमरीका 11 सितंबर तक अपनी फौजों का इनखला करना चाहता है, तो हुआ यह है कि उन्होंने कहा है कि वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग आपसे है 21 साल पुरानी, उसके तहत हमें ये जो फजाई कॉरिडोर और जमीनी कॉरिडोर है वो दिया जाए। तो पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा ये किया हुआ कि ठीक है जी, हम उस अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप अफगानिस्तान से इज्जत से जा सकें। अब जो इसको नया तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कोई माहदा कल हुआ है जिसके तहत नए अड्डे दिए जा रहे हैं, नए रास्ते दिए जा रहे हैं, दिस इज टोटल रॉन्ग।
बहुत खूबसूरत आपने बात की, बे इंतहा शुक्रिया। मगर आपकी इस पूरी बातचीत से ये है कि टिल सितंबर जब तक वहां से इनखला होता है तब तक इस जगह को इस्तेमाल करेंगे, इस जुबानी मुआहदे।
मैं शायद कम्युनिकेशन में मसला हो गया, ये मेरा गैस है, ये हतमी बात नहीं है। हो सकता है कि उसके बाद भी वो फैसिलिटीज जब भी जरूरत पड़े, कि फर्ज करें कि अफगानिस्तान या रीजन में उन्हें हंगामी तौर पे इस्तेमाल करने हो, तो वो उसी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से वो कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि फौरी तौनियत का मसला, तो उनकी अफगानिस्तान से वापसी
सही पसंद नहीं आई, किसी को ये बात पसंद नहीं आई, हमारी लाइन मनकता हो गई। उसदुल्ला खान से अपना लाइन दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। यकीनन हमारा कंसर्न है, जिशान ने मुझे कहा है कि एक मिनट का वक्फा दीजिएगा, बिल्कुल एक मिनट का वक्फा लेते हैं। हम आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं फजल वदूद साहब का, फजल वदूद इंश्योरेंस से मुतलिक, इंश्योर प्रो के साथ आपका ताल्लुक है, लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस लॉन्ग टर्म केयर बिजनेस इंश्योरेंस के लिए आप रब्ता कीजिए फजल वदूद 9056075000 और मोहम्मद शहजाद सिद्दीकी जो ऑल स्टेट के साथ वाबस्ता हैं, वो सिर्फ गाड़ी और घर की और गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए बेहतरीन आपको सर्विस देंगे। मोहम्मद शहजाद सिद्दीकी का नंबर 6472032355546। आप अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस पे बेशुमार डॉलर्स की सेविंग कर सकते हैं, 9052035546 उनका नंबर है। पिज्जा प्रोज का भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ, इनकी 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिज्जा देना है, पेंज रोटीज देना है या चिकन विंग्स देना चाहते हैं तो पिज्जा प्रोज, इवन अगर आपने फ्रेंचाइज स्टार्ट करनी है तो आपको टर्न की ऑपरेशन स्टार्ट करके देंगे पिज्जा प्रोज के जनाब इश्तियाक मलिक 4165080, मैं उनको सेल दे रही हूँ 5087683 उनका नंबर है। ریکوڈک کے بارے میں بھی آپ نے کلیئر کر دیا اور یہ خبر ابھی پاکستان تک پہنچی نہیں شاید, اور آپ کو پتہ ہی ہے, مگر جو ہی ہماری ملاقات ہوتی ہے دو ایک اسپانسرز کا پیغام لیتے ہیں, اس کے بعد ہم وسط اللہ خان صاحب سے آپ کی بات چیت کرائیں گے. خبروں کی ڈیٹیل کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے محترمہ شازیہ صاحبہ. یہ تقریباً 5:30 کے قریب, 5:20 پہ شازیہ صاحبہ تشریف لائیں گے, شازیہ ملک صاحبہ اور جناب ماجد جمال صاحب ہمارے خبروں کے سیگمنٹ کو ڈیٹیل نیوز جو انٹرنیشنل نیوز ہیں ان کو کور کریں گے. مگر اس وقت ہم پاکستان کی صورتحال کے لیے آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں جناب وسط اللہ خان صاحب کے. ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, چند ایک اسپانسرز کا پیغام. ویلکم بیک.
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟ گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں فاطمہ گروسرز, مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
ہیئر میکس لے کر آئے ہیں الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن وتھ ورلڈ اسمالیسٹ ایڈوانس اینڈ ڈیجیٹل ہیئرنگ ایڈز, وہ بھی سب سے کم قیمت میں. کسی بھی ہیئرنگ ایڈ کی خریداری پر بنا کسی فکر کے 3 سال کی وارنٹی بھی حاصل کیجیے. فری نو اوبلیگیشن ہیئرنگ ٹیسٹ کے لیے آج ہی کال کیجیے ہیئر میکس. سرو کرتے ہیں جی ٹی ایم میں 2 لوکیشن سے,
جین ایگلنٹن یا پھر دنداس ایرنڈیل کے انٹرسیکشن پر. 4167928792 ہیئر میکس, 4167928792.
کشمیر کڑھائی پوائنٹ, بہترین لذیذ ذائقے دار کڑھائی یا پھر کری ڈشز ہیں, تھالی یا باربیکیو آئٹمز ہیں, کڑھائیاں بہت مزے کی ہیں, ویجیٹیبلز اور بریانیز کے لیے دے آر جسٹ ٹیکنگ آرڈرز اوور دا فون. اسکپ دا ڈشز, اوبر ایٹس یا پھر ڈور ڈیش. کشمیر کڑھائی پوائنٹ, پاکستانی اینڈ انڈین کوزین, 225 کیسل اوک کراسنگ ان برامپٹن, 9057585099.
فرسٹ مارکیٹ, سیکنڈ مارکیٹ یا پھر ہو بے لون,
سوچو نہ بس بالکل بھی, ہونے ملاؤ فون.
416-502-8000. سٹریس چاہے لاکھ دہ ہوئے یا کاکتا, اس زندگی مشکل کر دیتا ہے. باقی باتیں ایک طرف, آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق, جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز, سبھی کے لیے شیراز شفیق. 416-502-8000. لائسنس نمبر 10845. انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
اکال 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 مورگیجز.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ, ڈسبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کے پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا, 416-894-5872.
جی ہاں, صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں.
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف. 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں.
جناب وسط اللہ خان صاحب ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہے. سر السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے.
بھائی صاحب جی فریز ہو گیا تھا سارا.
نہیں میں نے کہا شاید بتی چلی گئی ہو, ہم نے سمجھا شاید لائٹ چلی گئی ہوگی.
نہیں نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال وہی تھا, نیٹورک کا ایشو تھا.
وہ کہتے ہیں جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو تب بھی چیزیں فریز ہو جاتی ہیں.
میری تو ناک لمبی ہو جاتی ہے.
پینوکیو پینوکیو. اچھا آپ سر فرما رہے تھے, ذکر کر رہے تھے,
بتا دیں ابھی تو 5 منٹ گزر گئے.
ہم ریکوڈک کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے.
نہیں ریکوڈک کے بارے میں بات ہو چکی تھی, ہم امریکی اڈوں کے بارے میں,
امریکی اڈوں کے بارے میں بات کر رہے. میرا بڑھاپا ہے, میری یادداشت اچھی نہیں ہے. آپ تو بہت جوان ہیں, مجھے جھوٹے ہیں مجھے پتا.
یہ کہہ کہ جو آپ
حال آپ کا بھی میرے والا ہی ہونا ہے, آپ فکر نہ کریں.
میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھ کے.
سر وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہے نا, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خوب ہی نہ نکلا, بابا وہ ادھر ہی ہے.
اچھا اچھا اچھا, تسی سارے چنگے شیر اپنے وال کر لیو.
अच्छा अब बताइए जी क्या सूरत हाल है अड्डों की, मतलब ये अड्डों का मामला, तो दिस मीन आपने भी जो फरमाया कि यानी आपका तसव्वुर है, आपका ख्याल है कि जब तक इनखला होगा यूज करेंगे, मगर अगर
नहीं, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं,
मगर क्यों पाकिस्तान पाबंद है उस जुबानी मुआहदे का?
पाकिस्तान की जरूरत है तो पाबंद है ना, अगर जरूरत ना हो तो पाबंद ना हो। किसने कहा था कि आप 50s में सिएटो और सेंटो में जाएं? किसने कहा था कि अक्टूबर 1947 में एक लिस्ट लेके जाएं? किसने लियाकत अली खान से कहा था कि वाशिंगटन जाके ये कहें कि सर जी असी तो आड़ी खिदमत आस्ते हाजिर हैं, सानू 4 डिवीजन तैयार करके दो, असी रूस ना लड़ांगा। रूस से पाकिस्तान जो एक साल पहले पैदा हुआ था उसकी आखिर क्या दुश्मनी हो सकती थी? तो हम वॉलेंटियर करते हैं, हम कॉर्नर का प्लॉट हैं। मैंने टोरंटो में जो देखा है कि वहां पार्किंग लॉट्स हैं खाली प्लॉट पे, वो क्या है? खाली प्लॉट पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, आपको किराया मिलेगा, यही बिजनेस है। मैंने देखा वहां जो हाई स्ट्रीट्स हैं उन पे, तो बिल्कुल कभी कभी मुझे लगता है कि ये मुल्क भी जो है उसे कॉर्नर प्लॉट के तौर पर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए जी अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए और हमें किराया दीजिए। तो इस तरह की जो सूरत हाल है ये 73-74 साल से तमाशा चल रहा है। पहले हम सौदा कर लेते हैं और हमारा जो सौदा है पाकिस्तान आलम इस्लाम की अगर मैं मिसाल दूं तो सबसे अच्छा जो सौदा और बार्गेन करने वाला मुल्क है वो हमेशा मिस्र रहा है। मिस्र ने कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी, कितने अड्डे दिए होंगे, क्या किया होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि वो कॉर्नर का मुल्क है उसने अपने ज्योग्राफी को बेचा, अपनी नहर को बेचा, अमेरिका उसे फॉर नथिंग, चले इसराइल के साथ तो उसका है कि इसराइल उसके लिए काम करता है, मिस्र जो को 3.5 बिलियन डॉलर मिलते हैं, नहर स्वेज से जो है वो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर मिलते हैं, टूरिज्म से 8 बिलियन डॉलर मिलते हैं, डिक्टेटरशिप है लेकिन इमेज ये है कि एक सेकुलर मुल्क है, तो उसको अपने आप को मार्केट करना आता है। हमारा मसला ये होता है कि हम यहाँ अड्डे भी देते हैं, हम उनकी तेल मालिश भी करते हैं, हम उनसे कहते हैं होर जी की खिदमत करिए, लेकिन जब वो ये कहते हैं जी पैसे कितने लेंगे तो हमारे जवाब होता है जी जो मर्जी दे देना। जो मर्जी दे देने का मतलब ये है कि वो जितने भी पैसे देंगे आपको लगेगा ये कम है, और फिर आपका जैसे कायरा या कराची में टैक्सी वाले से झगड़ा होता है हमेशा उस तरह झगड़ा होता है इन ताकतों से, आपके ख्याल में होता है कि जी इस काम का इतना पैसा मिलना चाहिए, उनके ख्याल में इतना पैसा बनना चाहिए, तो वी आर पुअर बार्गेनर, इसलिए हमें गुस्सा आता है, इसलिए नहीं गुस्सा आता कि हम अपनी खिदमत उनके लिए पेश करते हैं।
आपने इजिप्ट की बात की है, बहुत दफा इन्होंने ऑटोमन्स को तोड़ने की कोशिश की थी और जब इजिप्ट साथ मिला था तो फिर लाइन भी उड़ाई गई थी और फिर इजिप्ट ने भी अपना रोल प्ले किया था। इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी।
मतलब अरफा जी ये मुस्तफा खान साहब अगर ये ऐसे ही चलता रहा ये मुआहदा जो जिस पर्चे पे नहीं है मगर फिर भी अगर ये मुआहदा ऐसा चलता रहा तो सीपैक और चाइना से हमारी दोस्ती का क्या बनेगा?
असल में चीन भी जो है वो भी इस हक में है। देखें ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर या तो आप मेरे दोस्त हैं या फिर आरफा के दोस्त हैं वरना कुट्टी, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। एक खित्ते में जो है वो ममालिक जो एक दूसरे के हरीफ होते हैं दूसरे खित्ते में एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं। मसलन चाइना का इंटरेस्ट इस इलाके में ये चाइना का और अमेरिका का बिल्कुल एक इंटरेस्ट है अगर साउथ एशिया की बात करें बल्कि वेस्ट एशिया की, कि उनको उगर जो मुसलमान है उनका इशू है, अमेरिका को इशू ये है कि कहीं आईएसआईएस जो है वो रिवाइव ना हो जाए और अलकायदा जो है वो उस तरह से जिंदा ना हो जाए, तो यहाँ आके दोनों के मफादात मर्ज कर जाते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो थिएटर है इस पूरे प्रैक्टिकल का, तो उसमें ये बात बिल्कुल चाइना के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका जो है और पाकिस्तान का रिलेशनशिप रहे और चाइना और पाकिस्तान का भी इस हवाले से रिलेशनशिप रहे। हाँ अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान اس خطے کی بجائے ساؤتھ ایشیا یا ویسٹ ایشیا کی بجائے ساؤتھ چائنا سی کی میں ہوتا, مطلب فلپین کی جگہ ہوتا پاکستان یا جاپان کی جگہ ہوتا, تو پھر ٹینشن ہو سکتی تھی کہ یا تو پھر یار امریکہ کے ساتھ چلو یا ہمارے ساتھ چلو. لیکن اس خطے میں دونوں بڑی طاقتوں کے مفادات مرج کر رہے ہیں, یہی تو خوبی ہے, یہی تو خوبصورتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی.
مگر سر چائنا آج میں دیکھ رہی تھی کہ آج کینیڈا کی جو ہمارا البرٹا کا ایریا ہے وہاں کے جو انہوں نے پابندی لگا دی ہے چائنا کے ساتھ ٹھیک ٹھاک, ہواوے کو بھی بلاک کیا آج, ہواوے نے اس کا بھی حربہ نکال لیا ہے. مگر کینیڈا میں البرٹا میں انہوں نے یونیورسٹی کو ایون چائنیز کے ساتھ ریسرچ کرنے پہ بھی بلاک کر دیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز چائنا کی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ریسرچ بھی نہیں کر سکتی. مگر پوری دنیا نے چائنا کو ایک تھریٹ کے طور پہ تو دیکھا ہوا ہے نا, اور امریکہ چائنا کو سب سے بڑی تھریٹ سمجھتا ہے.
ایسا نہیں, اس لیے کہ امریکہ اپنے ڈیفنس بجٹ پہ جتنا خرچ کرتا ہے وہ دنیا کے مجموعی بجٹ کے برابر ہے. تو اگر یا تو آپ تھریٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے 19, اگر آپ 20 خرچ کر رہے ہیں تو وہ 19 یا 18 خرچ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ڈیفنس بجٹ دونوں کا سٹڈی کریں, تقریباً 1 اور 15 کا فرق ہے. تو اس میں اس آرگومنٹ میں جان نہیں ہوتی کہ جی تھریٹ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 2050 میں چین جس رفتار سے بڑھ رہا ہے اس وقت واقعی وہ امریکہ کے برابر اس کے وسائل ہو جائیں, تب تو وہ تھریٹ ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال یہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی تھریٹ بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی جیسے اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ انسیولائزڈ عربوں کے سمندر میں ایک
ویری سیولائزڈ فرسٹ ورلڈ کنٹری.
جی اس طرح کا تو یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے تاکہ دشمن کو ہمیشہ دبا کے رکھا جائے, اور یہ ہر دشمن استعمال کرتا ہے.
مگر سر آپ نے آج یہ بڑی نئی سی بات بتا دی کہ چائنا تھریٹ نہیں. جو بائیڈن نے آنے کے بعد پہلا جو بیان دیا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ صورتحال یہ ہے, بٹ چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ. میں آپ کو باقاعدہ ای میل میں سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے, شیئر امریکہ ایک ویب ایک سائٹ بنائی گئی ہے جو ہم لوگوں کو نیوز بھی بھیجتی ہے, جس میں موسٹلی جو نیوز ہوتی ہے وہ از ٹو ڈی فیم چائنا. تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرح آج کی پالیسی پہ تو کام نہیں کرتا, وہ تو 50 سال اور 100 سال آگے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا سدے باب تو وہ آج سے ہی کریں گے نا, اگر چائنا کو انہوں نے بلاک کرنا ہے. اینڈ آپ تو 2050 کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ دے آر پریپیئرڈ ٹل 2080, تو چائنا کو تو وہ ہر لحاظ سے بلاک کرنا چاہیں گے.
نہیں تو یہ ان کا حق ہے, کیوں نہ بلاک کریں.
مگر پاکستان تو پسے گا نا.
اب پاکستان 10 سال بعد کس کے ساتھ ہے, پاکستان کا اپنا کیا ہوتا ہے, چائنا کی پالیسی کیا ہوتی ہے, انڈیا اور چائنا کے تعلقات کیا سب اختیار کرتے ہیں, یہ تو 10 سال بعد کی بات ہے نا. پالیٹکس میں تو ایک ہفتہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندازوں کے مطابق نکل جائے تو. ظاہر ہے کہ جو سپر پاورز, اسی لیے سپر پاورز کہلاتی ہیں کہ وہ لانگ ٹرمز جو آپشن ہوتے ہیں اور شطرنج کا جو کھیل ہے اس میں وہ 10-10 چالیں ایڈوانس میں سوچ کے رکھتی ہیں, اور یہ سارا کا سارا پھر اس طرح ہے, ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے. ظاہر ہے خطرہ ہے لیکن ابھی نہیں ہے فوری طور پہ. ابھی تو چین کو امن کی ضرورت ہے, امن کی اگر نہ بھی ضرورت ہو تو کم از کم اس سچویشن کی ضرورت ہے جس میں کم از کم جنگ نہ ہو, فزیکل جنگ نہ ہو, کیونکہ اسے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا ہے اپنی ترقی کے اعتبار سے, اپنی ٹیکنالوجی کی برتری کے اعتبار سے, سب چیزیں ہیں. تو اس کو تو ابھی ٹائم چاہیے. امریکہ آلریڈی اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے, لہٰذا امریکہ کو ظاہر ہے کہ یہ نیچرلی تھریٹ ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے. تو یہ تو جو بین الاقوامی سپر پاورز ہیں ان کے درمیان ایک نیچرل ریلیشن شپ اسی طرح کا ہوتا ہے.
بہت شکریہ. اور میں نے اگر 9 جرنلسٹ کو سنا ہے تو ان کا موقف مختلف ہے. آج پہلی دفعہ آپ کا موقف مجھے مختلف نظر آیا ہے. حالانکہ میں اگر مین اسٹریم کا یہاں کے جرنلسٹ کو پڑھتی ہوں आप अमेरिकन जर्नलिस्ट को देख लीजिएगा, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को देख लें, तो मुझे मौकफ कुछ और नजर आया। तो इज द फर्स्ट डे के यू नो आई स्टार्टेड लुकिंग एट अ डिफरेंट अंदाज से मैंने इसको सुना है आपसे। पाकिस्तान की तरफ लेके चलती हूँ, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमेशा से अपनी जात से सिंसियर रहे। दो वाक्यात बहुत शदीद हैं, एक तो जिक्र करना चाहती हूँ, जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने रिज़ाइन किया। यस, इस गवर्नमेंट ने ज़ाती तौर पे दो इंक्वायरीज हुई हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने खुद से वो इंक्वायरीज कराई हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत बड़ी बात की कि कोई प्रूफ कर दे कि इस जो हमारी रिंग रोड है पिंडी की, इसमें मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, ना मैं, ना मेरी बहन, ना मेरी मेरे पेरेंट्स, मगर पता चला है कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। तो वो रिंग रोड का मामला कहाँ तक पहुँचा?
नहीं, रिंग रोड का मामला हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं कैरेक्टर्स
के साथ, मगर सर सॉल्व तो नहीं हुआ ना।
नहीं, तो एक हफ्ते में कौन सा मामला सॉल्व होता है? तो इसको तो खैर अच्छा खासा जो है अभी तो शुरू भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता नहीं एफआईए करेगी, नैब करेगा, किस तरह होगा सिलसिला, तो अभी तो बहुत अरसा लग सकता है, हो सकता है साल से ज्यादा लगे, हो सकता है 6 महीने में ये हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी है, अब मसला ये है कि अगर मुझे आपके से कोई प्रोजेक्ट लेके उसमें अपना कमीशन या हिस्सा रखना है, तो मैं तो बहुत ही बेवकूफ होऊंगा जो वसतुल्लाह खान के नाम से काम करूं और मैं आपका टारगेट बन जाऊं कि यार देखो, एक तरफ तो ये कैसी कैसी जो है लंबी लंबी बातें करता है, ईमानदारी, फलाना, इंटेग्रिटी, और दूसरी तरफ इसने देखो किस तरह का किया है। तो अगर मैं जरा सा भी जहीन आदमी हूँ या कम बेवकूफ आदमी हूँ, तो मेरा पहला ऑप्शन ये होगा कि मैं कोई थर्ड पर्सन ढूंढूं, उसके नाम पे ठेका जारी हो, उसी को पेमेंट्स हो, बाद में छप्पर में मैं उससे अपनी डील कर लूँ। तो ये तो एक आम बात है दुनिया में, जो प्रैक्टिस है ठेकों की वो यही होती है। कौन सा ऐसा सियासतदान है, मतलब कौन सा मियां नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा ठेका है जो अपने नाम पे लिया होगा, या शहबाज शरीफ ने लिया होगा, या इमरान खान की कैबिनेट में किसी ने लिया होगा? ये तो एक आम कारोबारी प्रैक्टिस है कि जो इस्टेब्लिश किस्म के लोग होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट अपने नाम से चीज़ें नहीं लेते, उनके हाली मवाली होते हैं, फौज होती है हाली मवालियों की, और उसके ज़रिए वो काम करते हैं और फिर उसमें से हिस्सा थोड़ा सा उन्हें देते हैं, बाकी अपना रख लेते हैं। तो अगर जुल्फी बुखारी का डायरेक्ट नाम नहीं है, तो मैं इस बात से इसलिए मुतासिर नहीं हूं कि ये तो फिर एफआईए खोज लगाएगी कि फिर जो बंदा जिसे ठेका मिला उसका जुल्फी बुखारी से कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता ना अभी।
बहुत शुक्रिया सर। मेरी लास्ट खबर, चौधरी निसार साहब 3 साल तक खामोश रहे, उनको बड़ी रिजर्वेशंस थी कि एक से जो मेन स्ट्रीट है उसके ऊपर घपला हुआ और इलेक्शंस में धांधली हुई, और इसी चक्कर में वो अपना नहीं ले रहे थे, ओथ नहीं ले रहे थे। अब जब उन्होंने ओथ लेना चाहा है, तो क्या उनके साथ कोई प्रॉमिस हुआ है, क्या हुआ?
नहीं, ओथ वो सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे हैं कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला रही है कि जिसने 90 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाया उसकी सीट खाली करार दे दी जाएगी। और मेरे ख्याल में कि इस कानून में कोई कबाहत नहीं है, एक आदमी जब इलेक्ट होता है और अवाम उसे इस भरोसे पे वोट देते हैं कि वो उनकी जाके नुमाइंदगी करे, तो अगर वो 3 साल तक उनकी नुमाइंदगी नहीं करता, तो मेरे ख्याल में वो अमानत में खयानत का मुर्तकिब होता है, और अब तक इसकी कोई रेमेडी नहीं थी। अब चूंकि लॉ बनने जा रहा है 90 दिन का, तो चौधरी साहब जो हैं उनको एक फिक्र पड़ी है। दूसरे ये कि 2023 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो अब फर्ज करें कि वो सीट विकेट करते हैं, तो बकौल उन्हीं के ये अजीब गरीब बात होगी कि मैं सीट भी विकेट करूँ जब उस पर बाई इलेक्शन हो तो दोबारा खड़ा हो जाऊँ, तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं जाके हलफ उठा लूँ और मुफ्त का खर्चा करूँ सिर्फ इसलिए कि 1.5 साल के बाद फिर दोबारा खर्चा करना पड़े। उनका आर्गुमेंट भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो लॉ आ रहा है वो एक अच्छी बात है। रहा इनका ये कि जी चौधरी निसार साहब किसी के इशारे पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो देखें, हर बैटरी सेल की एक मियाद होती है, तो जब वो मयाद ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो रहता है, अलमारी में रहता है, लेकिन आप उसे दोबारा रेडियो में नहीं लगाते। और सियासत में और शो बिजनेस में एक कदर मुश्तरक ये है कि जब आप स्क्रीन से तवील अरसे के लिए आउट होते हैं तो फिर आपकी 50% जो अहमियत है वो वैसे ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब ये है कि आप जब सियासत में दाखिल होंगे तो डिस्काउंटेड रेट पे दाखिल होंगे, अपनी मनमानी कीमत पे तो दाखिल नहीं होंगे। तो उस तरह से वो एक बड़ा खतरा फौरी तौर पे नहीं है। अभी तो ये भी नहीं पता, वो आज़ाद आदमी है कि वो मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कह चुकी हैं जी, उनके तो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और पीटीआई में जाहिर है कि उनके मिजाज के खिलाफ है,
मगर उनके दोस्त हैं इमरान खान, इकट्ठे पढ़े हुए।
दोस्त तो मेरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनके साथ बैठ के कारोबार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनके साथ बैठ के ताश खेल सकता हूँ, इसलिए कि मैं उनके मिजाज से वाकिफ होता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी दोस्ती उनसे ना हो।
आपने जब तो इस कानून